also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
शांति। आई लव राजयोगा। अभी तक जो सीरीज शुरू हुई थी आई लव, तो बहुत सारे हमने देखे और आज हम देखेंगे आई लव राजयोगा। सबसे पहले किसी से भी जो प्यार करते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं, उसको समझते हैं, और क्योंकि जो प्यार होता है तो एक संबंध होता है, फिर प्यार होता है, तो उसके लिए उसके बारे में जानना होता है, समझना होता है, उसे फ़ायदे क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो राजयोगा है, क्योंकि योग जो है ये छोटा शब्द नहीं है। योग का हम कहते हैं कि जोड़ या फिर, लेकिन योग का जो योग शब्द जो यूज़ होता है वो आध्यात्मिकता के लिए यूज होता है। तो आखिर सबसे पहले देखेंगे राजयोगा है क्या। क्या है राजयोगा, राज जानने के लिए। और हाँ, जो योग श्री बाबा सिखाते हैं वो राजयोग है ना। तो राजयोग के डिफिनेशन तो बाहर बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के दिए हैं, और एक तरह से देखा जाए तो राजयोग से अलग कोई योग है ही नहीं, सभी योगों का राजा है वो। तो बाकी बहुत सारे जो डिफिनेशन से हमको तो पता है, बाबा ने भी बताए हैं, कुछ पहले से भी जानते थे कि हाँ अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना या फिर बाबा से जुड़ना, इसको राजयोग कहते हैं। लेकिन और क्या हो सकता है, मतलब वो शब्द तो शब्दों का फेर है, खेल है, कोई बोलेगा कि हाँ ऐसा तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में राजयोग को हम महसूस कैसे करें कि राजयोग, हम राजयोग कर रहे हैं कि कोई और योग कर रहे हैं। क्योंकि हम योग में बैठे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम राजयोग ही कर रहे हैं। एक जो बाबा ने भी कहा है, दादियाँ, जानकी दादी भी कहते थे कि प्रेजेंट में जीना। मतलब एक तो चलो बहुत ऊपर की बात हो गई कि हम परम धाम में गए, वहाँ पे शिव बाबा से कनेक्ट हो गए, वो ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में जो शुरुआत कर रहे हैं, अगर कोई एकदम शुरुआत में आए तो उसको कैसे समझ में आएगा कि राजयोग क्या है? हाँ वो ठीक है, कहेंगे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, हाँ तो उसको कैसे समझ में आएगा कि राजयोग क्या है, या फिर मैं राजयोग कर रहा हूँ तो मुझे क्या फायदे हो रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले दिखता है जो स्थूल चीजें हैं वही दिखता है। तो सबसे पहले जो हम महसूस कर सकते हैं राजयोग कि हम कितना प्रेजेंट में जी रहे हैं। अभी यहाँ पे हम बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर क्लास सुन रहे हैं, तो हमारा ध्यान और कहाँ कहाँ जा रहा है, या फिर जो बीत गया वो, या फिर जो आने वाला है वो, तो कौन सी चीज़ें याद हमेशा, मतलब कहीं पे भी अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको उस समय हम ये ध्यान रखते पहुँचना है, वहाँ पहुँच के क्या होगा, किससे मिलेंगे, या फिर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की यादें रहती हैं कि जिनसे मिल के आ रहे हैं। लेकिन हम जब घूम रहे हैं या फिर गाड़ी में बैठ कर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उस समय को नहीं मतलब महसूस करते, थोड़ा सा रहता है बाकी सारी चीज़ें, तो वो चेक करने कितना परसेंटेज, पूरा 100% तो नहीं होगा लेकिन कितना परसेंटेज हम अभी में जी रहे हैं, तो वो एक राज्य, क्योंकि अपने हम मतलब मन पे राज्य कर रहे हैं उस समय जब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो एक राज्यों का एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा कि जो हमारा अपने आप को हमेशा फ्री फील करना, फ्रीडम मतलब कोई भी चीज़ बॉन्ड नहीं हो, क्योंकि हम राजा हैं ना, तो राजा को किसी चीज़ का बंधन नहीं हो, मतलब बंधन मतलब कोई बंधन नहीं होता कि किसी के दबाव में वो कुछ नहीं करता है, अपनी मर्जी से वो हर कुछ करता है, तो एक तरह से वो फ्री होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। तो हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें देख सकते हैं कि क्या मैं राजयोगी हूँ, अर्थात मैं जो भी सोच रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, अभी मुझे ऐसे बैठना है तो मैं ऐसे ही बैठूँगा, तो वो भी एक राजयोग है। और बाकी थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जैसे हमारा मन होता है, मन भी दो तरह का होता है, एक चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जैसे कहते हैं कि जो हम सो जाते हैं फिर भी हमारा दिल धड़कता है, हमारी सांसें चलती रहती हैं, तो कौन चलाता है? हम ही चलाते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चलाता है। कहते हैं सतयुग में जो देवताएं होते हैं उनका एक ही माइंड होता है, टू माइंड नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड दोनों मर्ज हो जाता है, तो इन दोनों के जोड़ को हम कहेंगे राजयोग, इसको भी कह सकते। क्योंकि शिव बाबा को याद करना भक्ति में भी याद करते हैं लोग, ऐसे भी याद करते हैं, तो उसको याद करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को एक्चुअल में जानना तो वो याद स्वतः ही होगी। जैसे एग्जाम्पल कॉमन है लेकिन फिर भी बता रहे, जैसे सूर्य की लाइट है तो हमें सूर्य को देखना है संकल्प भी करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल कर अगर सनलाइट में बैठ गए तो वो अपने आप ही हम उससे उसकी लाइट हम उसकी एनर्जी हमारे ऊपर आती है, लेकिन हमें बाहर निकलना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद को जानना, बाकी शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा से तो हमने साकार मिलन भी मनाया है, मतलब सामने से मिले, फिर भी हमारी स्टेज क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, उससे वो मिला क्योंकि हमारा पहले का कुछ पुरुषार्थ था, लेकिन फिर भी अगर हम आगे नहीं बढ़े या फिर हमने अपने आप को एक्चुअल में नहीं जाना क्योंकि हमें वो पुरुषार्थ करना है, उसने तो नॉलेज दिया। तो राजयोग अर्थात अपने आप को जानना, तो शरीर और आत्मा का योग भी राजयोग कहला सकता है, चेतन और अचेतन मन का योग भी राजयोग है। तो राजयोग के बहुत सारे डिफिनेशन है, हमारा ईगो खत्म हो जाए अर्थात राजयोग है। अगर हम योग कर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी अगर किसी भी ईगो, मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, वो ईगो नहीं कह रहे, लेकिन ईगो मतलब इस शरीर का भान रहना भी एक ईगो ही है, मतलब कि मैं योग कर रहा हूँ ये भी नहीं, मतलब एकदम उसमें मर्ज हो जाना। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो बहुत पता है हमको, उसको थोड़ा सा अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो दोनों हाथ हैं तो ऐसे रखेंगे योग की अवस्था में, और एक हाथ को जो पहला ये सिर्फ हथेली है, हाथ भी नहीं सिर्फ हथेली, और एक हाथ को महसूस करेंगे कि ये मैं हूँ, मैं आत्मा, एक ऊर्जा को महसूस करना, और दूसरा जो हाथ है उसको महसूस करना बाबा है, शिव बाबा, और ये दोनों हाथों को महसूस करना है, मतलब ये दोनों हाथों में जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, कुछ कंपन जैसा हो रहा होगा, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए दोनों हाथों को महसूस करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली जो है वो मैं हूं, और जो बायां हाथ की हथेली है वो शिव बाबा है, दोनों समान है दिखने में, हाथों के उंगलियों के कंपन को महसूस करेंगे, एक एक उंगलियों। सारा ध्यान हथेलियों पे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को उठाएंगे और धीरे धीरे आपस में जोड़ेंगे, जैसे मैं और बाबा दोनों मिल रहे हैं, और जोर से दोनों हाथों को मिलाएंगे आपस में, अर्थात मैं और बाबा आपस में मिल रहे हैं बहुत ही प्रेम से, और दोनों हथेलियों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। शिव बाबा से ऊर्जा मुझ में आ रही है, ओम शांति। ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे हाथों का, तो वो वाइब्रेशन फील होता है। तो वहां पे अगर हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये भी एक चेतना है, मतलब जो हमारा मन है वही शरीर है, क्योंकि मन से हम सोचते हैं वैसे ही हम शरीर का भी निर्माण करते हैं। तो अगर हम मन से सोचेंगे कि ये वो है, तो वही हम महसूस करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर, नहीं तो देव, नहीं तो पत्थर, क्योंकि सारा कुछ वहां पे हमने क्या थॉट डाला कि हाँ ये पत्थर है या फिर भगवान है, तो वो एक भावना होती है। तो उसी प्रकार हम ये जस्ट महसूस करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऐसा फील होता है कि हाँ सही में कैसे हम महसूस कर सकते हैं उस चीज को। अभी योग क्या है और बाकी लोगों ने योग के बारे में क्या कहा है वो थोड़ा देखेंगे। जैसे योग के कई प्रकार बताएं, एक्चुअली सारा कुछ राजयोग का ही है, लेकिन जैसे नाम अलग अलग होता है, शब्दों का जो खेल होता है, तो उसमें जो योग बताएं, सबसे पहला है भक्ति योग। भक्ति योग में कहते हैं कि उसको भी योग ही कहा है, भक्ति हम जैसे बाबा कहते हैं कि भक्ति है, योग ज्ञान अलग है, लेकिन एक योग में ही सबको कंबाइंड किया है। और वो अगर उसकी परिभाषा देखें तो वो सही है, ज्ञान में भी हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वह शब्दों का ही खेल है। तो जो सबसे पहला बताया भक्ति योग, भक्ति योग अर्थात मतलब एक भावना होती है उसमें, जैसे भगवान से जुड़ने के लिए वो भावना को यूज़ करते हैं, भावना और बहुत डीप लव, तो भगवान से एक असीम प्रेम उनको रहता है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान का नॉलेज नहीं है, लेकिन जो वो प्रेम है और भावना है उसके आधार पर हम जो भगवान से जुड़ रहे हैं उसको हम कहेंगे भक्ति योग, जो अगर दुनिया वालों के हिसाब से देखा जाए तो। फिर दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के आधार पर अपने आप को परमात्मा से जोड़ना या फिर अपनी डिविनिटी से जोड़ना। ज्ञान में मतलब जो भी फिलॉसफीज हुई हैं या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र वगैरह लिखे, उसके आधार पर भगवान से जुड़ना। उसके बाद है कर्म योग। जो कर्म बाबा ने हमें कर्म योग सिखाया है, जो बाबा ने ज्ञान योग में भी जो भगवान ने ज्ञान दिया, तो सबसे पहले तो ज्ञान के आधार पर ही हम मिलते हैं, एकदम डायरेक्ट तो होता नहीं, ज्ञान से समझते हैं कि हाँ भगवान आया हुआ है, और उससे फिर हम जुड़ते हैं या फिर जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो ज्ञान योग, फिर कर्म योग। कर्म योग अर्थात एक होता है कि कर्म करते बाबा को याद करना, वो भी एक योग है। दूसरा निस्वार्थ सेवा करना, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ध्यान लगाते हैं बैठ के, मेडिटेशन करते हैं, और कई लोग होते हैं वो नहीं करते हैं, वो दूसरों की सेवा करते हैं, समझते हैं कि जैसे कहते हैं ना सर्वव्यापी का जो कॉन्सेप्ट है कि सब में भगवान है, तो दूसरों की सेवा करो तो अर्थात भगवान को प्राप्त करना। लेकिन वो भावना बहुत अच्छी होती है उसमें कि जो सभी हैं वो अच्छे हैं, डिवाइन हैं, तो सबकी सेवा करना ही भगवान से, भगवान को मिलना है, वो हो गया। और बाकी जो हम कर्म करते भी भगवान को याद करते हैं, अपनी जो प्रेजेंट में रह के कर्म करते हैं, तो उसको भी हम कर्म योगा कहते हैं। उसके बाद और जो योगा बताया है राजयोगा, तो उनने जो डिफिनेशन बताई है कि राजयोग अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना, मतलब हमारी जो भी कर्मेंद्रियाँ हैं हमारे बिना कुछ भी ना करें, जो भी करें हमारे ऑर्डर प्रमाण ही करें। फिर एक क्रिया योग होता है बाहर में कहते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है और उसके भी बहुत लोगों ने उस पर काम किया। उसमें नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग, जो कलर और लाइट और कलर जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, अलग अलग प्रकार के रंगों का वो विजुअलाइज करना, उसको बॉडी में महसूस करना, जिसमें हम बोल सकते हैं चक्र वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो उसको क्रिया योग कहते हैं। मतलब उसमें पूरी चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, एक वो एक मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आता है एक अग्नि योग। अग्नि योग अर्थात उसमें कहते हैं कि अपने अंदर एक सूर्य को महसूस करना कि मेरे अंदर एक इनर सन, मतलब अंदर में एक अंत सूर्य है जो फैल रहा है चारों तरफ, उससे ऊर्जा निकल रही है तो अपने शरीर में, या फिर तो उसका हम लोग जो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रिक्यूटी में हूं, तो उसी का एक वो अलग नाम बोल सकते हैं, लेकिन है वही चीज कि मैं आत्मा अपने अंदर एक इनर लाइट को महसूस कर रहे हैं और मुझसे चारों तरफ ऊर्जा फैल रही है। उसके बाद शब्द योग या फिर मंत्र योग, मतलब मंत्रों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं जो, तो ये सारी चीजें जो हैं। और फिर एक हठ योग, हठ योग नाम दिया है क्योंकि उसमें शरीर का काफी उसमें रोल होता है, फिजिकल पोस्चर, आसन, प्राणायाम वगैरह, हठ योग का भी बहुत विस्तार है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। हठ योग में भी 7-8 प्रकार के उसमें बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। तो ये जो सारे अगर हम योग देखा जाए बाबा के ज्ञान से अगर हम मिलाएं तो कुछ अलग नहीं है, भगवान से प्यार हमें भी है, भावना से हम भी जुड़े हुए हैं, ज्ञान है, अपने को आत्मा समझना अर्थात अंदर से हम अपने आप को एक लाइट समझ रहे हैं, फिर कलर रंग तो हमारे हैं ही, 7 कलर जो बाबा ने बताए हैं, 7 गुण, 7 रंग, तो ये सारी चीज़ें बाबा ने, जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया सारा कुछ उसी का विस्तार है, लेकिन वही फिर उनको कहते हैं ना कि ज्ञान चारों तरफ है क्योंकि परमात्मा ज्ञान पूरे यूनिवर्स में है, तो जो अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लेता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान मिलता है और वो खुद की कोशिश से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, मतलब पूरा प्योर जो आटे में नमक समान, तो वो होता है, मिलता है उनको भी ज्ञान, और ज्ञान क्योंकि अगर ज्ञान देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा नहीं है कि सबको लगता है कि हाँ अभी दुनिया परिवर्तन होने वाली है, विनाश होना, बहुत बाहर वालों को भी ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये दुनिया तो अब बहुत ये हो गई, लेकिन वो तो वही है जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी ये कभी वो, एक जगह पे एकाग्रता नहीं होती है, और वो सबसे जरूरी है जो योग के लिए एकाग्रता, अगर एकाग्रता नहीं है तो एक्चुअल जो योग है वो नहीं हो पाता है क्योंकि हम भटक गए हैं उस शरीर में आने के बाद, और फिर हम उससे जुड़ने के लिए वही सिखा रहा है कि सबको भूल के अभी इसको याद करो, लेकिन फिर भी अगर हम भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो याद नहीं आती है या फिर अपने आप को नहीं जानते, इसीलिए दिखाते भी हैं भक्ति में कि पार्वती रहती है तो वो जाती है शिव, मतलब शंकर जी जो भी उनके सामने बोलते हैं कि मैं ही हूँ आपकी जो पहले पिछले जन्म में मैं सती थी, तो बोलता है कि कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, जबकि वो जानता है कि हाँ यही है, लेकिन क्या है उसकी जो अवस्था है अपने देहभान से बोल रही है, उसको प्यार है कि हाँ वो जानती भी है, लेकिन वो कहते हैं कि जो शरीर का जन्म होता है विकारों से होता है, तो वो विकार को लेकर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति में भी जो दिखाया है काफी मतलब ये समझने के लिए अच्छा है, लेकिन तो वो विकार के रहते हम भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए फिर भक्ति में ये पूजा, ये करो करो, व्रत करो, सारी चीजें बताई हैं, क्यों, क्योंकि उन विकारों से मुक्ति हमको चाहिए, उसके बिना हम भगवान से नहीं मिल सकते, तो विकारों से मुक्त होना ही है राजयोग, क्योंकि उससे अगर हम मुक्त हो गए तो आत्मा तो अपनी जो सत्व प्रधान अवस्था है उसमें आ जा रही है, उसमें अगर आ रही है तो हम परमात्मा से अपने आप ही जुड़ रहे हैं। तो ये जो योग के बहुत सारे प्रकार बताए, फिर वो एक जो योग है मंत्र योग या शब्द योग, तो हम जो स्वमान लेते हैं वो कहीं ना कहीं, स्वमान क्या है, शब्दों का प्रयोग है अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, स्वमान ही योग नहीं है। बाबा ने भी कहा है कि जो ज्ञान का विस्तार है इसको भी लास्ट में कम करके बिंदु बन जाना है, स्वमान एक मंत्र हो गया ना, मंत्र अर्थात क्या, वो मीनिंग उसको लोगों ने मंत्र बना दिया, बाद में लोग भूलते गए तो फिर थोड़ा सा उसको आपको करना है करके डर पैदा किया गया ताकि लोग एटलीस्ट डर के भी करें, जैसे पूजा पाठ में ही है अभी लोग कोई कर रहा है नहीं कर रहे हैं तो और ही दुनियावी चीज़ों में भटक रहे, तो उनको ये बताया गया कि नहीं नहीं ये पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये व्रत नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या वो डर से करते हैं, लेकिन एटलीस्ट करने से कुछ तो फायदा होता ही है भले वो डर से ही कर रहे हैं, तो इसलिए वो जैसे बाबा भी कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, फिर कहता है कि नहीं करोगे तो तुमको ये सजा मिलेगी वो सजा मिलेगी, तो क्या सच में वो सजा देने वाला है क्या, सजा तो अपने आप ही मिल जाती है, एक बार ज्ञान हो गया कि मुझे ये नहीं करना है और वो चीज़ें जब होती हैं तो अपने आप ही अंदर अंदर से ही वो गिल्ट फील होता है, और वो जो गिल्ट फील होना है वही हमारी सजा है। तो ये योग के प्रकार थे। फिर जो दो योग बताए हैं, एक हठ योग और राजयोग, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है अगर अभी के हिसाब से देखा जाए। बाकी योग के नाम अलग है, लेकिन अभी जो खास करके दुनिया में भी हठ योग और राजयोग, आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअली में देखा जाए तो हठ योग वो हो गया जो कोई भी चीज़, इवन हम बैठे भी हैं सिंपल, और वो भी ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि बिठाया गया है, फोर्सफुली करना कोई भी चीज़। और कोई अगर आप आसन कर रहे हैं या फिर कोई बहुत हेवी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर प्रेम है, जैसे बाबा कहता है कि प्रेम में मेहनत, मोहब्बत से मेहनत नहीं लगती है, मोहब्बत में रहते हैं तो मेहनत नहीं लगती। मेहनत तो है ही, ज्ञान में जब शुरुआत में आए तो कितनी मेहनत थी, अभी तो काफ़ी थोड़ा कम हो गया है ऑनलाइन सब हो जाने के कारण, लेकिन जो उस समय जो शुरुआत हुई थी तो कितनी मेहनत थी, हर कुछ में मेहनत था और बाबा ने हर कुछ कराया है। तो इसलिए जो मेहनत से की जा रही है वो हठ योग है, और जो प्रेम से की जा रही है वो राजयोग है। सिंपल डेफिनेशन है। अभी हठ योग में भी कई तरह के बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बहुत अलग अलग चीज़ें। उसमें जो मेन वो लोग फोकस्ड करते हैं आसन और प्राणायाम पे, मतलब शरीर का एक पोस्चर हो और सांसों का। बाबा ने कहा है कि आप जब योग में बैठते हैं तो आपका शरीर का पोस्चर अपने आप ही सीधा रहता है, आपको अलग से कोई आसन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन और श्वास जो हमारी होती है अपने आप ही स्वतः ही वो कंट्रोल में हो जाती है राजयोग से। अगर हम बैठे हैं या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस समय हम प्रेजेंट में हैं या फिर अपने आप को पहचान के वो काम कर रहे हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि मेरी श्वास तेज चल रही है या धीमी चल रही है, कैसी चल रही है, वो स्वतः ही एक नॉर्मल चलती है। क्योंकि कोई भी जो नेचुरल है, नेचुरल से अगर हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो वो सही नहीं है, वो चाहे बहुत अच्छा इधर के तरफ है, उधर जो नेचुरल है वैसे हो तो ही अच्छा है, ज़बरदस्ती बैठ जाना 4 घंटा वो भी अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हठ योग में आ जाता है। राजयोग माना ही बैलेंस, हर चीज का बैलेंस हो उसमें क्या। अब बैलेंस का अर्थ ये भी नहीं है कि एकदम सुस्त रहे, वो बैलेंस धीरे धीरे बदलते रहना चाहिए। जैसे शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है वो समझना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ों पे हम जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का क्या। तो पहले आत्मा और शरीर का संबंध समझेंगे तब तो आगे का समझेंगे ना। हम जिससे मिल रहे हैं पहले उससे तो समझें, बाबा से मिलना तो दूर है, अभी हम सामने किसी से मिल रहे हैं तो उसको कितना हम आत्मा समझ रहे हैं, फिर कितना समझ रहे हैं कि हाँ ये भी एक, हम उसको देखते ही कहते अच्छा तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, या फिर उनसे जो भी पहले की बातें हुई हैं, पहले जो रिलेशन रहे हैं, वही चीज़ सोच के हम उनसे मिलते हैं। तो हमने नया क्या देखा वहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो वो जानना है जो हम दिन भर में जो हम कर रहे हैं, सुबह में उठते ही हम क्या सोच रहे हैं। तो बाबा ने कई सारी मुरलियों में भी, अभी जैसे साकार मुरलियों में खास करके राजयोग का शब्द बहुत बार आता है, और अव्यक्त मुरलियाँ अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी मुरली नहीं है जिसकी शुरुआत आज, मतलब बाबा हमेशा आज से ही शुरुआत करते हैं। आज मतलब आज का ही समय है, पहले और बाद का नहीं, आज। तो जो जो पास्ट और फ्यूचर, जो भूतकाल और भविष्यकाल को जोड़ देना, ये भी राजयोग है। मतलब अभी जो है यही है, वही राजयोग है। ना पहले कुछ हुआ था ना आगे कुछ होगा, जो होना होगा होगा, लेकिन अभी को हमको ठीक रखना है तो अच्छा ही होगा, और पहले का भूल जाएंगे तो, क्योंकि जो हम परेशान क्यों होते हैं, हमको जो बीती हुई चीज़ें याद आती हैं, बीती हुई चीज़ों सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, या फिर भविष्य की चिंता होती है क्या होगा, पापा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना है, पता नहीं क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हम उसी से परेशान होते हैं ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। अगर कोई बस अभी सोचे कि अभी कुछ पता ही नहीं है कि कल क्या था और कल क्या होगा, फिर आगे क्या होगा अभी, तो कितना हम उसको इंजॉय कर सकते हैं, छोटे बच्चे की तरह। कहते भी हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत ही वो प्रेजेंट में रहता है, मतलब वो पूरी आत्मिक स्थिति उसकी रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको बताया जाता है ऐसा ये होता है ऐसा वो होता है, भाषा सिखाई जाती है, फिर ये तुम्हारे माँ है, उसको क्या पता कौन माँ है कौन बाप है, कुछ पता है क्या उसको, लेकिन उसको बताते हैं ये माँ है ये बाप है ये ऐसे है ये दादा है ये ताई है, जो भी रिलेशंस बताते हैं, फिर उसको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए ये बता, उसको ये भी पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ी पता है कि हम अगर ये नहीं खाएंगे तो ये विटामिन की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, उसको तो कुछ नहीं पता होता है। उस हड्डी कमजोर हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। तो वो सत्वप्रधान अवस्था है, इसलिए बाबा भी कहता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, भगवान का रूप भी उनको कहा जाता है। कुछ भी नहीं पता है उनको, नहीं वो खा ही नहीं सकते, छोटे बच्चे को कुछ भी खिलाओ तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको बच्चा बनना है अभी फिर से, अभी बड़े बने, अभी फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा का भी बोलते हैं कि वो भी अपने आप को बच्चा ही समझते थे बाद में, क्यों? क्योंकि वो बच्चा बनना ही, अभी जैसे कोई भी अगर जो बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे वो बच्चों वाली उनमें चीज़ें आने लगती हैं। ये प्रकृति का बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे अभी क्या बुढ़ापा के बाद फिर अगला जन्म बच्चा के रूप में होगा, हाँ भूलने लगते हैं या फिर वो बचपना वाली हरकतें बहुत सारी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी फिर से उनको बच्चा बनना, ताकि वो पहले से वो एक्सपीरियंस हो। बच जाओगे, बच्चा बनेंगे तो बच जाएंगे। तो ये तो बहुत सारी और राजयोग जो है एक्चुअली देखा जाए तो कोई किसी को बता नहीं सकता, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा है वैसा है, कोई पूछेंगे तो पूरा अलग हो सकता है डेफिनेशंस। जैसे मुरलियों के पॉइंट एक पॉइंट लेते हैं तो दो तीन लोगों के पूरे अलग अलग उस पर विस्तार कर सकते हैं, और है भी तो ज्ञान ऐसा गोल गोल है कि कोई भी आएगा तो उस पर अपना तर्क दे के आराम से। तो इसमें सबसे ये है कि हम अपने आप को अपने आप से ही पूछना कि क्या है राजयोग और महसूस करना, बाकी कोई नहीं बता सकता कि क्या है। हम बता रहे हैं कि वो मैंने अभी तक क्या समझा है, क्या एक्सपीरियंस किया है, या फिर बस उतना ही तक है, और हो सकता है आज जो बोल रहे हैं कल दूसरा भी मेरे डिफिनेशन वो चेंज हो सकते हैं। हम जो भी बोलते हैं ना, हम जो अभी कर रहे हैं, अभी मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं सब कोई पूछेगा तो मैं वो बताऊँगा। तो दो साल पहले जो कर रहे थे वो अलग था, आज थोड़ा अलग है, आज जो कर रहे हैं वो अभी बताएंगे, कल कर रहे थे वो कल का अलग हो जाए, हो सकता है। लेकिन जो बाबा का ज्ञान है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो बस एक ही ज्ञान है, लेकिन उसको समझने की विधि अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जैसे एक भाई मिले थे तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने पहले मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला कि खुदा जो है वो पाक है, पवित्र है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो जितने भी चीज़ें सब जगह खुदा है। तो मैंने इसे डिस्कस किया, मैंने बोला आपने कहा कि वो पाक है, पवित्र है, तो जो पवित्र है वो अपवित्र जगह पे तो नहीं हो सकता है। तो बोले कि नहीं नहीं वहाँ पे फिर वो शैतान है, मतलब शैतान मतलब वो है। मैंने बोला अर्थात मतलब वो नहीं है सब जगह ना, सिंपल सी बात। तो खुद ही अपनी बातें क्लियर करते हैं कि हाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं सब जगह है। तो वो एक वो भावना है, वो ज्ञान का ही जो कहते हैं ना थोड़ा सा। तो क्योंकि जो परमात्मा की एनर्जी है वो तो है ना सब जगह, है डेफिनेटली है। तो हम उस वो जो ऊर्जा है उसी को परमात्मा मान लेते हैं। अब सूर्य है एक जगह ही है लेकिन उसकी लाइट चारों तरफ है, तो हम वो लाइट को ही सूर्य तो नहीं मान सकते ना, लेकिन लाइट तो है, सब जगह जा रही है, उसकी गर्मी तो सब जगह महसूस हो रही है। तो यही है। बाकी राजयोग का अपने यज्ञ में भी एक बहुत अच्छा बुक है, इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग का, उसमें भी बहुत अच्छे से मतलब इंग्लिश में है उसका, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन सेवन डेज कोर्स भी उसमें आ गया, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से डीप बाकी बाहर में लोग क्या कहते हैं राजयोग का, क्या अलग अलग नाम क्या है, वो सारी चीज़ों को उसमें बताए हैं। तो अभी राजयोग से फ़ायदे क्या क्या हैं, तो राजयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर संडे की मुरली देखा जाए तो कुमारों से मुलाकात में बाबा ने कई सारे शक्तिशाली, तो राजयोग से क्या होता है शक्तिशाली बनते हैं, अचल अडोल बनते हैं, और असंभव को संभव करना। जो चीज़ दुनिया में लोग कहते हैं कि वो असंभव है कि मतलब हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें संभव, तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है, इस मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। एक वीडियोस देख रहे थे तो उसमें दिखाया कि उनने दो मैग्नेटिक मैग्नेट्स लिया कुछ, उससे वायर कनेक्ट किया, वो संकल्पों से, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं कर रहे, बस दो मैग्नेट लिया, उसे वायर जोड़ा, स्पीकर जोड़ा सिंपल, और एक बहन को बोला कि आप बोलो कुछ और इसमें रिकॉर्ड होगा, हम अलग से कुछ वॉइस रिकॉर्डर नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ थॉट। उसने बोला और वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई, और एग्जैक्टली जैसे बोला उसमें कुछ भी बीच में इंटरफेरेंस वगैरह नहीं था। तो कैसे हुआ, संकल्प से, जैसे ये भी कहते हैं कि हम, जैसे पानी का हम कहते हैं कि पानी का हम चेंज कर सकते हैं जो पीएच वैल्यू होता है, संकल्प चेंज कर सकते हैं। तो वो इन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, मतलब ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने जो प्रूफ किया है इस चीज़ को, इसके वीडियोज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो लोग उसको चेंज किए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहा है तो वो लोग उसको, जिसका बहुत फोकस्ड माइंड है, कई लोग होते हैं बाहर में भी जिनका माइंड बहुत ही शार्प होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो लोग वो चीज़ करके प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि हाँ कैसे कर सकते हैं थॉट से चेंज करना। दूसरी चीज़, हम एक दूसरे के माइंड को पढ़ सकते हैं, कौन क्या सोच रहा है, सोच रहा है मतलब, लेकिन फिर भी माइंड को हम पढ़ सकते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया है कि दो बहनें हैं, मतलब दो फ्रेंड है, वो उनको बुलाया, एक को बोला कि आप जाओ, मतलब ऐसी अननोन जगह पे, उसको भी नहीं पता कहाँ जाना है, और बाकी दूसरे को भी नहीं पता है, और जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता है कि इनको कहाँ भेजना है, बट उनको बोला कि आप जाओ, वो गई, और दूसरे को बोला कि आप सोचो कि ये कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बस जो जो उनको दिख, आपको जो विजुलाइज हो रहा है कि उनको दिख रहा है, उनसे, उनके माइंड से कनेक्ट हो जाओ, और फिर आपको जो जो फील हो रहा है उसको आप नोट डाउन करो। तो जा रही है, फिर वो उसके बारे में बस सोच रही है कि हाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, मतलब पहली जा रही है और दूसरी उसके बारे में जो सोच रही है, उसके माइंड से कनेक्ट होके। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, जैसे कलर, वो एक घर, कोई घर दिखता है, रेड कलर की बिल्डिंग्स रहती है बहुत सारी, तो उसने ऐसे रेड रेड लिखा कुछ। फिर एक झूला जैसा रहता है वो घूमने वाला, तो उसने रॉड उसमें लगे रहते हैं बहुत सारे, तो रॉड ब्लैक कलर का। एक पेंटिंग रहती है, तो ऐसे ऐसे उसको पूरा नहीं क्लियर हुआ लेकिन कुछ कुछ विजुलाइज हुआ, और जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही थी। मतलब अगर हम एक दूसरे को माइंड को कनेक्ट कर अगर हम जोड़े तो हम जुड़ सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, तुरंत आ जाता है सामने, या फिर हम कुछ गाना, सॉन्ग कुछ मन में सोच रहे होते हैं, सामने से कोई गाते हुए आ रहा होता है, ये बहुतों के साथ होता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम थॉट जो हमारा होता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट होता है। टेलीपैथी तो हो गया, टेलीपैथी एक हो गया कि हम थॉट, मतलब थॉट से बात करते एक दूसरे को, इंटेंशनली हम बात करते, थॉट मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज रहे हैं, वो भी है। और ऐसे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं किसी, कोई अननोन है उससे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं माइंड से, लेकिन उसके लिए बहुत फोकस, मतलब एकदम जिसका कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है ना, इसलिए कई लोग हैं ऐसे दुनिया में हैं जो कि दूसरों के फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे कई हैं, ऐसे देख के बता देंगे कि हाँ, तो कैसे बताते, क्योंकि वो बस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर कई लोग पास्ट लाइफ देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ बता देते हैं, नाम वगैरह, इवन पिछले जन्म का छोड़, इस जन्म में जो भी हुई है वो सब बता देते हैं कि हाँ आपके साथ ये हुआ है, आप ये सोचते रहते हो, आप ऐसा है वैसा है। और जो ये मेडिकल में जो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, उसमें जो चेक करते हैं ब्रेन वेव्स वगैरह जो हम देखते हैं, तो उसमें उसका इन्वेंशन ही स्पेशली इसके लिए लोगों ने किया था कि कैसे हमारा जो हमारा संकल्प है कैसे काम करते हैं। इस पे जगदीश भाई जी ने भी बहुत सारा इस पे काम किया है कि जो आत्मा का एक्चुअल जो है कि जगह ब्रेन में वो कैसे है वहाँ पे, और वहाँ से कैसे कंट्रोल करते हैं सारी ऑर्गन्स को, कैसे काम करता है, तो इस पे तो बहुत विस्तार है। तो राजयोग समझने के लिए ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हम जब योग करते हैं तो आत्मा समझना ठीक है, लेकिन कई बार एक एक बस ऑर्गन को ही अगर लेकर चले, जैसे हाथ को अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, तो उसकी एक फीलिंग अलग ही होती है। बस एक कोई से एक उंगली है उसको ही बस फील करना कि उंगली में क्या हो रहा है, क्या सेंसेशन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो उससे धीरे धीरे हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो और राजयोग से क्या क्या फायदे हैं? हाँ, बाबा ने 28 तारीख की मुरली में कहा था कि आप कौन हो, नींद जीतने वाले, निंद्रा जीत। अभी नींद, अच्छा नींद क्यों आती है हमें, नींद क्यों आती है, क्या राजयोग से नींद अच्छी आती है जब आत्मा, एक्चुअली नींद मतलब नींद शरीर को आती है, आत्मा कभी नहीं सोती है देखा जाए तो। आप अगर सोते भी हैं तो कुछ ना कुछ ड्रीम में चले जाते हैं, कहीं और कुछ कर रहे होते हैं, आत्मा सोती ही नहीं है। लेकिन शरीर क्यों सोता है, क्योंकि शरीर थक जाता है, अगर शरीर ना थके तो उसे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आत्मा जो शरीर है वो भी आत्मा की ही जैसा काम करे तो धीरे धीरे वो शरीर रहेगा ही नहीं, शरीर का कोई भान ही नहीं रहेगा। अलग है सोचना कि शरीर नहीं हूँ मैं, आत्मा हूँ, अलग है वो ठीक है, लेकिन शरीर को ही ऐसा बना सकते हैं कि शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही ना रहे, एक्चुअली हमें जो नींद आती है वो दो तीन कारणों से आती है। एक तो हम अपनी बॉडी को अगर टॉक्सिन से भर रहे हैं तो भी, और मन को भी टॉक्सिन से भर रहे हैं तो मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। मन में बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या हमें नींद आती है, मतलब नींद मतलब सोचते हैं कि उसको भूल जाए। उसके लिए कई लोग ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक मतलब उससे अपने आप को हटा देना तो शरीर सो जाता है। जैसे ऑपरेशन होता है तो क्या एनेस्थीसिया देते हैं तो शरीर क्या होता है बेहोश हो जाता है। तो ये जो हमारी नींद है वो क्या है, वो नेचुरल एनेस्थीसिया मिल जाता है उसको तो सो जाती है। एक्चुअली में शरीर को सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि निंद्राजीत है, निंद्राजीत बनो। लेकिन शरीर को अगर हम कुछ भी अगर गलत कर रहे हैं, अननेचुरल कर रहे हैं तो उसको नींद ज़्यादा आएगी, नहीं तो बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है और शायद नींद की कोई ज़रूरत भी नहीं हो। कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम सोते हैं, वीक में 2-3 घंटा हैं, ऐसे लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे हैं दुनिया में। हाँ, उनका खान पान भी अलग है, वो अलग चीज़ है, बट है, ऐसा पॉसिबल है। नॉर्मल भी अगर कोई फास्टिंग करता है तो उसको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो अगर ये भी हम लोग क्या जबरदस्ती नींद करते हैं, नहीं जबरदस्ती सोना, ये भी एक्चुअली प्रोग्रामिंग हमने बना रखी है ना कि अभी इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे उठना है, सारा कुछ प्रोग्रामिंग है। इतने बजे खाना है, ये नाश्ता का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, तो ये सारा कुछ, सिर्फ खाना ही नहीं, हर कुछ की प्रोग्रामिंग हमने कर रखा है। इसलिए हम अपने आप को एक इसमें बांध दिए हैं, बंधन में। राजयोग अर्थात फ्रीडम, सब चीज़ों से, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है मुझे जो 9 to 5 अगर मुझे सेवा मिले तो सेवा करना है, ऐसा नहीं है कि कोई बंधन है। लेकिन उसको ये समझ के कि अगर वही हम करते हैं, जैसे मंडे है तो मंडे को सब लोग क्यों बोर फील करते हैं, मंडे है क्यों, क्योंकि मंडे से काम करना है, सेवा करना है, संडे को छुट्टी है, संडे को सोच के अच्छा लगता है, संडे को अच्छा नहीं लगता, सैटरडे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कल संडे है, और संडे को क्या लगता है, संडे को टेंशन में रहते हैं कि कल मंडे है। तो एक्चुअली में होता है, अगर जो जिनका ऐसे ऑफिस वाला काम रहता है वो सैटरडे को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, काम कर रहे सैटरडे को लेकिन सैटरडे को इंजॉय कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कल संडे है, कल काम नहीं करना है। मतलब जो भी जिसकी भी जब भी छुट्टी होती है, अगर किसी को छुट्टी पे जाना है तो छुट्टी के पहले ज़्यादा इंजॉय करता है, छुट्टी में कम इंजॉय करता है, सोचता है अब ख़त्म हो रही है, जैसे जैसे वो ख़त्म होने वाली रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो हमें इस प्रोग्रामिंग से निकलना है। करना सब कुछ है, वही शरीर में है तो शरीर के लिए जो भी करना है वो सब कुछ करना है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग से निकल के कि ये मुझे करना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रीडम, मतलब मुझे खाना है तो बिल्कुल खाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। कहते हैं कि इवन शरीर का जो लुक है या फिर वेट है या फिर ये भी हम अपने संकल्प, कई लोग बहुत खाते हैं लेकिन शरीर बहुत ऐसे ही रहते हो, कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? कई एक अंकल हैं जान पहचान के, वो नॉनवेज सब कुछ आराम से, और लेकिन दिखने में एकदम बहुत पतले। क्यों? क्योंकि वो मन से हमारा जो सोच होता है ना, कीड़े खा जाते, कीड़े कहाँ से आए अंदर तो वो कहाँ से आए? तो वो हमने प्रोग्रामिंग बना रखी है अपने मन की, कि जो भी कोई भी चीज़ का, राज्यों का ही है, अब एकदम उसको प्रोग्राम हुए में कि अभी मुझे ऐसा समझना है, अभी मुझे परम धाम जाना है, परम धाम नहीं जा रहे तो फिर भी टेंशन हो जाता है कि मैं तो परम धाम पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। कई लोग यही क्वेश्चन रहते हैं कि बीज रूप होता ही नहीं है तो क्या करें, तो राजयोग कोई टेंशन थोड़ी है राजयोग भी एक टेंशन हो जाता है कि अभी जैसे किसी का क्लास सुना, उसमें बोलेंगे कि अपने आप को परम धाम में महसूस करना, कि मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करो, यही सबसे अच्छा योग है कि परम धाम में जाके योग करना। अभी कोई जा ही नहीं रहा है परम धाम, जा रहा है फिर तुरंत आ रहा है, पहुँच जा रहा है, आ रहा है, उसी में चल रहा है, वो उसका ही टेंशन हो गया पूरा दिन कि मैं तो पहुँचा ही नहीं, रास्ते में ही अटक जा रहे हैं, पहुँच ही नहीं रहे, वो विजुअल, कई लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, उसको धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन उसको अगर प्रॉब्लम समझेंगे तो फिर उसी के टेंशन में रहेंगे, फिर और ही नहीं होगा, और ही सर भारी हो जाएगा, तो और ही अच्छी नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। तो राजयोग अर्थात इन्जॉयमेंट, मतलब एक लाइफस्टाइल ही बन जाती है। जैसे किसी को पूछा कि आप मेडिटेशन करते हो क्या, तुमने बोला नहीं मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो पूरा दिन 24 घंटा है, वो 24 घंटा जो स्टेज रहती है, हर चीज़ को जो कर रहे हैं उसको ही इतने लगन से कर रहे हैं, इतने एंजॉयमेंट के साथ कर रहे हैं, बस वही करते हैं, और कोई अलग से बैठ के मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो एक जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई गेम खेल रहे हैं तो कितना उसमें एकदम मगन रहते हैं, उस गेम में। क्यों? क्योंकि उसी उसी को जी रहे हो, वही खेल रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है बाकी दुनिया में। जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, वो बस मगन है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये राजयोग के बहुत सारा विस्तार है क्या? क्यों राजयोग से प्यार क्यों करते हैं? मैं राजयोग से प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। राजा बनना है, राजा बनना अर्थात ऐसा राजन, मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे कोई पद या फिर, वो तो अलग चीज है, वो तो जिसको मिलना होगा वो मिलेगा। अभी अभी राज्य कर रहे हैं कि नहीं अपने आप पे, अभी जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो रहा है ना। मुझे तो ऐसा नहीं है ना कि 7 से 8 मुरली सुने मतलब जबरदस्ती मुझे जाकर बैठना ही है मुरली क्लास में, नहीं तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, कौन क्या बोल देगा। इसलिए तो नहीं बैठ रहा ना कि वो देखेगा बोल रहे आप मुरली क्लास में नहीं आते हो, आप अमृत वेला नहीं करते हो, उसके लिए तो नहीं कर रहे ना। इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे हूँ मधुबन में क्योंकि मुझे आना था, मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो प्रोग्रामिंग की कि मुझे यहाँ पे आना है। इसलिए नहीं कि किसी ने बोला कि मधुबन बहुत अच्छा है तो मधुबन में ही जाके रहो, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज़ मतलब मुझे ये पढ़ाई करनी है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे करना है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि इसका इसके आगे मेरा क्या है। नहीं तो कई बार हम दूसरों के दबाव में आके सारी कुछ करते हैं, मतलब किसी ने बोला कि हाँ अच्छा है तो कर रहे हैं, ठीक है मैंने उस पर क्या एक्सपीरियंस किया कि उसमें क्या अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे कि राजयोग का मुझे बहुत कुछ आता है या फिर, बिल्कुल नहीं, वो तो शायद बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन अभी तक जितना मैंने समझा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस पर जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक जो लाइफ चेंज हो जाता है कि हाँ आप 1 साल पहले क्या थे अभी क्या हो, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। पहले ये संकल्प ऐसा संकल्प ना आए, इसको देख के ये संकल्प ना चले, वो ना चले, इस पे सारा पुरुषार्थ चल रहा है क्योंकि बाबा ने कहा किसी को गलत मत देखो, किसी के लिए तुम्हारे अंदर विकार के संकल्प भी नहीं आने चाहिए। तो अभी क्या वो चीज़ें हो रही हैं क्या? अभी नहीं हो रही हैं, मतलब चेंजेस आए, मतलब राज्यों का काम कर रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं सिंपल। बाकी वो जो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था, वो तो बहुत ऊपर की अवस्था है, या फिर वो बहुत आसान भी है, बहुत भक्ति में तो यही सोचते हैं ना कि भगवान बहुत ऊपर की चीज़ है तो उसको प्राप्त करना मतलब बहुत ऊपर का बात है, वो हमसे पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा ने जो मुरलियों में अभी जो जैसे पीछे की कई मुरलियाँ हैं उसका मैंने निकाल कर रखा है, वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे। उसमें जैसे बाबा जो सिंपल कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण तुमको बनना है, बापा है तुमको राजयोग सिखलाने, फिर कभी कहते हैं कि विकारों के तूफान से हो तो राजयोग, मतलब बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं तो इससे तुमको दूर करते हैं। तो हर दिन की मुरली में ऑलमोस्ट राजयोग के बारे में आता है, और ज़्यादातर जो इसमें यह है कि तुमको देवी देवता बनना है, सतयुग में जाना है, बापाए हैं तुमको राजयोग सिखलाने, ऐसी कई सारी मुरलियाँ हैं। तो मतलब राजयोग अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमारे अंदर परिवर्तन आए, परिवर्तन मतलब जो हम दूसरी दुनिया से थे वो नई दुनिया में हम जाएं, विकारों की दुनिया से निर्विकारी दुनिया में जाएं, कलयुग से सतयुग, बहुत सारे मतलब ये जो शरीर है शरीर परिवर्तन होकर दूसरे शरीर में परिवर्तित हो। तो ये राजयोग के बहुत बहुत सारी बातें हैं जो राजयोग के बारे में की जा सकती हैं। फिर कल की जो मुरली थी उसमें बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुमको मौत देने के लिए, तो राजयोग अर्थात ये वाला पॉइंट मैंने अलग से नोट किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। मौत, मौत अर्थात पुरानी दुनिया से जीते जी मरना। तो मुरलियों में भी राजयोग के साथ बाबा हमेशा राजा जनक का एग्जांपल देते हैं कि वो कैसे सेकेंड में, मतलब एक बहुत ही ईजी भी है बहुत डिफिकल्ट भी है राजयोग, वो कैसे, वो हमारे ऊपर कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसके ही कोई भी परिवर्तन मृत्यु योग कई करते हो, करना भी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा योग है, बहुत पसंद आता है कि अपने आप अपने ही शरीर को देखना कि कैसे वो मृत्यु हो रहा है, फिर परिवर्तन ये भी देखना है कि वो मरा तो दूसरा कैसे मिला अच्छा वाला शरीर, सिर्फ तो मार ये भी देख सकते, यही शरीर बदल गया दूसरे शरीर में, ये भी देख सकते, शरीर परिवर्तित भी कर सकते हैं कि यही शरीर है, शरीर से ही चेंज हो गया डायरेक्ट, मरने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं मरना चाहे तो। तो राजयोग, हाँ राजयोग सहज है क्योंकि इसमें हम इसमें कुछ कंफर्टेबल, वही तो है ना कि अगर हर चीज को एंजॉय किया जाए, हर हर चीज को अगर एंजॉय कर किया जाए तो राजयोग है। हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से निकले नक्की घूमने जा रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद सेवा में जा रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी हर चीज को एंजॉय करना, मतलब वही राजयोग हो गया। और उसको क्योंकि जब आत्मा खुश रहती है तो बाबा कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, आत्मा खुश रहती है तो अपने आप ही बाबा से उसको लाइट माइट सब कुछ मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा को खुश रहना, मतलब उसको खुशी से करना। जैसे कई बार सेवाओं में होता है कि पसंद नहीं आती है चीज़ें, लेकिन बाबा से वो स्नेह है तो कर लेते हैं, तो उससे कितने फायदे होते हैं। जैसे कोई काम ही है, ऐसा लगता है कि ये मेरा काम थोड़ी है, मैं थोड़ी करूँगा, लेकिन ये रहता है कि हाँ हम भगवान की सेवा पे हैं तो कोई काम छोटा बड़ा लगता ही नहीं है, वो हम कर लेते हैं आसानी से। तो क्या है, वो राजयोग ही है ना, मानो मतलब उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो राजयोग, नहीं तो हट योग। बाकी आप एक टांग पे खड़े होकर उसको अगर मजे से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो राजयोग है। सिर उल्टा करके शीर्षासन में है वो भी राजयोग है, उसको एंजॉय कर रहे हैं तो सिर उल्टा करना मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोग जबरदस्ती करते हैं, ऐसा लगता है कि इसी से मुझे प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। हाँ वो आपको करना है, आपको शरीर के लिए करना है तो बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हर कुछ ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। राजयोग अर्थात टोली खाना, राजयोग अर्थात ब्रह्मा भोजन खाना, बाबा की याद में भोजन करना राजयोग है, और उसके बिना याद के खाना हठ योग है, क्योंकि वो पछता नहीं है फिर देने वाला, मतलब दाता ही है ना, बाकी तो ले रहे, राजयोग अर्थात देने वाला, वो उसके मतलब मन में जो रहता है ना वो देने का भाव रहता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर कुछ हम दे ही सकते हैं, इवन ये भी कहते कई बार कहते हैं कि कभी कभी ना जो ना शब्द है उसको भी यूज़ करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हाँ जी हाँ जी, हाँ जी शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे हमारी स्थिति डाउन हो रही है या फिर सामने वाले को भी हम अच्छे वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर ना कह के तो एक कम्प्लीटली ओके है। इसमें कोई बहुत हम ये नहीं हो जा रहे कि मैंने इस चीज़ के लिए, हाँ जैसे कुछ बोला गया और पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं हाँ जी कर रहा हूँ, उस चीज़ को गड़बड़ कर दिया, हाँ तो वहाँ पे ये कहना कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर ठीक है नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसके बिना कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार जो डेफिनेशंस होती हैं ना वो परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। जैसे महाभारत में दिखाया है कि उन लोगों ने किया था कि हम उनकी बात मानेंगे ही, तो सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा बोला है, तो शब्दों पर आ गए, तो शब्दों की बात नहीं है, बाबा ने कहा हाँ जी करो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार चेंज करना होता है कई सारी चीज़ें। पहले बाबा मिलन जैसे होता था आज वो नहीं हो रहा है, तो पुरुषार्थ में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ पहले जैसा हो रहा था आगे भी वैसे ही होगा। हाँ कई जो कहते हैं कि आप कुछ कुछ ये सब चीज़ें हैं कि ये बाहर के लोग करते हैं, आपको कैसे पता हो बाहर के हैं, क्या सभी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं सब बीके ही बन के आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, वो कुछ और उनका वो कुछ और तरीके से आत्माओं को ऊपर उठाने का काम कर रही हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो जो एडवांस पार्टी में वो फिर से बीके बन के ही आएंगे और फिर से यही पुरुषार्थ कराएंगे, बिल्कुल नहीं, कई अलग अलग तरीके। और दूसरी चीज़ है कि हमें हम जिस चीज़ के लिए हमें जो करना है मतलब हमारे सामने ही वो इन्फॉर्मेशन आती है, क्यों हर किसी के पास होनी जाती है। मेडिटेशन के बारे में, राज्यों के बारे में लोगों के कितने लोगों को बताया जाता है, क्यों सबको टचिंग नहीं होती है, क्योंकि उनको करना नहीं है अभी, उनका समय नहीं आया, और हमें करना है, हमारा समय आएगा तो हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी हमें करना होगा, क्योंकि वही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल मुझे वही चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, कल मैं लोगों को बोल रहा था कि नहीं ऐसा करो वैसा करो कि ये सब संन्यास ये सब तो बहुत ही ये लोग छोड़ देते हैं। मुझे खुद मैंने पहली बार जब इसके बारे में सुना था, एक मेरा फ्रेंड था जैन फ्रेंड था, तो उसने अपनी सिस्टर के बारे में बताया कि वो दीक्षा लेने वाले, तो मुझे खुद ही शौक लगा था कि कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं, घर बार छोड़ते हैं और मिलते नहीं हैं, मतलब ये सब चीज़ क्या है, ये क्या ये कोई ये थोड़ी कोई मतलब ये है अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बारे में क्योंकि हमें हम उस फ्रिक्वेंसी पर भी हैं नहीं, हमें उस चीज़ का पता नहीं है कि क्या होता है। तो योग के बारे में कई जैसे कोई कहता है संन्यास योग या फिर ये तो संन्यास तो हमारा भी है ना, लेकिन संन्यास अर्थात ही नहीं कि छोड़ के चले जाए, संन्यास अर्थात निमित्त बन के उस चीज़ को संभालना, तो हो गया योग। ऐसे बहुत सारे योग हैं, और कुछ मुझे मुरलियों में बाबा ने कहा है पिछले 22 तारीख से लेकर अभी तक बहुत सारी मुरलियों में राजयोग, तो उसका निकाले उसका व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और एक जो बुक है इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग उसका PDF हार्ड कॉपी भी है मेरे पास, लेकिन PDF भी निकाला था तो वो भी भेज देंगे, वो बहुत अच्छी बुक है, अगर उसको पढ़े तो राजयोग के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी आती है। अपनी यज्ञ का बुक है वो, बाहर का नहीं है, बहुत अच्छा बुक है वो। अच्छा, ओम शांति।